महाबदन्नाय कृष्ण प्रेमविराजते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरवत्सि हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभांशु देवी प्रणमामि हा देवी का कुभर गदग अस्य प्रसादम बुद्धस्य जनस्य अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दे वरं जड्डं जागुदरोच संविदध संकटम्बरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितं भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै सिद्धास्य कामादितरङ्गमत्स्यै कृपामयीं त्वां शरणं देवि नमस्ते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वैराग्यजुगभक्तिरसंप्रयत्नैपायन्माननुभि कृपां बुधिरिजफरदुःखदुःखी समापनस्तं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं प्राति यं प्रव्रजन्तमनुते तमपे तुतिं वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया तर्भोभिनेदु तं सर्वभूतलया तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामिना इति ते ज्ञानराजे तं नय मामचारम् भजामि राधाम अरविंद नेत्रं स्मरामि राधाम मधुरस्मिताभ्यां वदामि राधाम करुणा भरद्रं ततो मम नास्ति वतुं से बृहद भगवता बृहद भगवतामृत का संक्षेप में प्रतिमा पूजा के संबंध में कुछ बतलाया था। उसमें बतलाया कि पहले दिन उन्होंने पूछा था जो शास्त्रों में पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत में और दूसरे दूसरे पुराणों में अर्चन पूजा में कुछ दोष बतलाया गया। आम एव हरे पूजां जा श्रद्धयते न तद्भक्तेषु चान्येषु भक्त साक्ष भक्त प्राप्त सूत्र। जो लोग अर्चा तो करते हैं, अर्चा का पूजन करते हैं, प्रतिमा का पूजन करते हैं, किंतु न तत् भक्तेषु च अन्येषु भक्तों का मान नहीं करते, उनकी पूजा नहीं करते, सेवा नहीं करते, च अन्येषु दूसरे लोगों को भी जो कि भक्त नहीं हैं किंतु भगवान के अधिष्ठान तो ही है, भगवान तो सर्वत्र है और स्वरूपतः भगवान का वो दास है कोई भी व्यक्ति, तो उसको भी सम्मान नहीं देते और पूजा करते हैं तो इनको प्राकृत भक्त कहते हैं। और भी बतलाया गया जो मांग सर्वेश भूतेषु मैं समस्त प्राणियों में अवस्थित हूँ तो जो लोग प्राणियों की सेवा, प्राणियों का सम्मान नहीं करते, निराधिष्ठान जान करके मूढ़ है, भस्मनी एव जीवति, वो मूढ़ है, भस्म में आहुति देने के समान, घी देने के समान वो बराबर हो जाता है। और फिर भागवत ने बतलाया, अहम उच्चावच्य द्रव्य क्रियो उत्पन्न आनभे नैव तुष्य अर्चितो अर्चायां भूत ग्राम अवमानिन। जो लोग भूत ग्राम, भूत समूह को, प्राणी समूह को, जीवों को अवमानना करते हैं, मान नहीं देते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, और ऊंचे नीचे अर्थात बहुमूल्य वस्तुओं से, असाधारण वस्तुओं से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी पूजा को ग्रहण नहीं करता। और भी प्रतिमा मंद बुद्धि नाम, प्रतिमा पूजा तो मंद बुद्धि लोगों के लिए है, इसलिए शास्त्रों में जगह जगह और भी बतलाया गया है, जो आत्मबुद्धि कुनपे तिघातु के स्वधि कलत्राधीश भौम इज्जधि जतित्व बुद्धि सलिले न कहित जनेशु
अभिकेशु सैव गोपदः।
यहाँ पर कहित जनेशु अर्थात भगवत भक्त जनेशु, अर्थात भगवत भक्तों में प्रीति नहीं है, और इस शरीर में त्रिधातु के में, त्रिधातु का जो शरीर बना है इसमें पूज्य है, पानी में तीर्थ बुद्धि है, किंतु वैष्णवों के चरण भुवन में और ठाकुर जी के चरण भुवन में जो चरणामृत का जल, इसमें तीर्थ बुद्धि नहीं है, और सर्वत्र तीर्थ बुद्धि करते हैं, और वैष्णवों में जो कि जगत का तारण करने वाले हैं, और कलिमल मथने पाद तीर्थे अम्ब बुद्धि, और कलि के दोषों को दूर करने वाले भगवान का जो चरणामृत है इसमें पानी की बुद्धि रखते हैं, अर्चे शिलाधीशु अर्चन वस्तु में जो अर्चन का जो ठाकुर जी हैं, सालग्राम हैं, ये ठाकुर जी हैं, ये जयपुर से सेकंड नंबर का मार्बल का बना हुआ ये मूर्ति है, दूसरे का ये नहीं, सेकंड नंबर का नहीं है, ये फर्स्ट क्लास का मार्बल का बना हुआ ये मूर्ति है। और पास वाली जो है वो अष्टधातु की राधा कृष्ण की मूर्ति है, और वो जो है गोवर्धन वाली, वो गोवर्धन की पत्थर वाली मूर्ति है। भाई बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर तो है, किंतु वृंदावन में उस मंदिर में जो देखा वैसी सुंदर नहीं है, वो और सुंदर है। इसकी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है और वो बड़ी अच्छी। ऐसे जो विचार करने वाले हैं, जो देखने वाले, चलो गौरांग, सोने का गौरांग नवदीप में है, उसको देखा, सोने के गौरांग मूर्ति, ऐसे जो पूजा करने वाले हैं ये ठाकुर जी के चरणों में, भगवान ऐसे लोगों की पूजा को ग्रहण नहीं करते। तो उन्होंने कहा जिसे ऐसे तो देखा जाता है, तो इनको सुनने से ठाकुर जी की पूजा का अर्चन करने को दिल नहीं चाहता, साधारण लोगों को ऐसा ही हो जाएगा ये सुन करके। तो ये शास्त्रों में एक जगह तो बड़ी इसकी महिमा लिखी गई और एक जगह ऐसी बातें लिखी गई, अब इसका सामंजस्य हम लोग कैसे करें? साधारण व्यक्ति इसका सामंजस्य नहीं कर सकता, यहाँ तक कि कनिष्ठ जो मध्यम है वो भी नहीं कर सकता। मध्यम मध्यम या मध्यम का जो उत्तम है वो शास्त्रों को दर्शन करके गुरु जी की कृपा से इस सब का मर्म जान सकता है। विशेष करके यहाँ पर बतला रहे हैं कि पूजा मार्ग के विधान को प्रणयन करने वाले, प्रचलित करने वाले नारद ऋषि हैं, और वो नित्य मुक्त है, उनसे बढ़कर के इसका तत्व कौन जानेगा। इसलिए इन सब इस प्रश्नों को सुन करके नारद जी परम आनंद से भर कर हमें उन्होंने आलिंगन किया है। आलिंगन करके कहा। आलिंगन क्यों? संदेहात्मा विनश्यति, जिसको इन विषय में संदेह हो। जैसे हमने कहा, कोई हमसे पूछा, अच्छा ये ठाकुर जी असली पत्थर वाले हैं या नकली पत्थर वाले हैं, झिरझिरी वाले हैं अथवा शुद्ध मकराना वाले हैं, तो हम प्रसन्न होकर उससे गले से लगा लेंगे तो न क्या करेंगे, गले से लगाएंगे, बल्कि हो सकता है कहें तुम्हारा मुख दर्शन करना पाप है, ऐसा कह देंगे। किंतु नारद जी ने उसको ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बैकुंठ में ऐसा कोई संदेह नहीं रह सकता। हाँ, पौरे आस में पीछे बस, सामने सब ऐसे बस में सब ये तो जाएगा, कतगुली आशे से तो बस बे हालो करे सब। बैकुंठ में ये बुद्धि आई नहीं सकती, इसलिए अवज्ञा भर के नहीं पूछ रहा। ये साधारण रूप से तत्व जिज्ञासा की भांति ये पूछ रहा है, चैलेंजिंग मूड में अथवा उस प्रकार के अपराध में प्रवृत्ति के कारण ये नहीं कह रहे, ये साधकों के हित के लिए ये ऐसा पूछ रहे हैं। उनको संदेह नहीं है, किंतु हम लोगों को संदेह रहता है, इसलिए हमारे कल्याण के लिए उन्होंने पूछा। ओ तुम जीव हित के लिए इतना करता है, इसलिए झट आनंद में भर करके उसका आलिंगन किया और धीरे धीरे उत्तर देने। उत्तर भी बड़ा गंभीर है। उन्होंने कहा, अरे जो साक्षात रंगनाथ की मूर्ति, पंढरपुर वाली वेंकटेश्वर की मूर्ति, जगन्नाथपुर में जगन्नाथपुरी वो जो मूर्ति है, मायापुर में से जो मूर्तियां हैं, वृंदावन में भी गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन की जो शिव विग्रह हैं, ये तो साक्षात भगवान है। ठाकुर जी कहते हैं जी, अरे हमारे नाक में छेद है, वो नाक बेशक लगा दो, मांगते हैं, और मुझे खिला करके ले चलना, और मैं कहीं जाता नहीं। तो भक्त कहने जाता नहीं तो आप बोलते तो भी नहीं है, तो आप बोलते क्यों हैं? तो जो बोल सकता है तो चल भी सकता है, ऐसे ऐसे लीलाएं करते हैं। कभी कभी कोई अलंकार मांगते हैं, कभी रात में कुछ सपने देते हैं, और कुछ बात भी पूरी करते हैं। कोई भक्त कीर्तन कर रहा हो जगन्नाथपुरी में गीत गोविंद का, तो झट झुरमुटों में दौड़ पड़ते हैं और उनके कपड़े और श्रृंगार सब हट जाते हैं। ऐसा कहाँ ठाकुर जी, ये साधारण, इसलिए तो इन लोगों की तो बात छोड़ दो तू, ये तो साक्षात भगवान ही हैं। इसके अतिरिक्त जो प्राचीन अथवा आधुनिक कोई भी मूर्ति हो अथवा स्वयं मूर्ति बनाया, जैसे रूप गोस्वामी जी ने कौन सी मूर्ति बनाई,
राधा दामोदर
की बनाई, अथवा हम घर पर ही हमने अपने आप ठाकुर जी बना लिए, गिरिराज जी की गोवर्धन शिला ले आई, शालग्राम शिला कहीं से ले आई, उनकी पूजा कर रहे हैं, अथवा अपने से ही किसी धातु का या किसी चीज का बनाया अपने मन के पसंद के अनुसार, अब बना करके और उसका पूजन यदि कोई करे श्रद्धा पूर्वक, तो वर्णाश्रम धर्म को वो छोड़ देता है, त्याग कर देता है, और त्याग करके उनकी यदि वो पूजा करता है तो वर्णाश्रम धर्म त्याग करने का भी उसे दोष नहीं लगेगा। उन मूर्तियों की तो बात छोड़ दो क्योंकि साक्षात भगवान के स्वरूप, बांके बिहारी कोई बनाया नहीं, अपने आप प्रकट हुए हैं, भक्तों ने प्रकट किया, मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी ने प्रकट किया, गोविंद जी रूप गोस्वामी ने प्रकट किया, गोपीनाथ को मधुमन पंडित ने, दामोदर जी को श्रील रूप गोस्वामी ने, ये सब अपने आप सब प्रकटित है। तो इन मूर्तियों में तो कोई संदेह की बात ही नहीं है, किंतु और भी जो कहीं से ले आकर के मंत्र के उपचार के द्वारा उसकी प्रतिष्ठा की गई, मंत्र उपचार इत्यादि के द्वारा, और अपने बना करके जैसे भी किया, तो उसकी सेवा करने से उत्तम भक्ति प्राप्त होगी। इसमें दोष की बात नहीं है। जो वो सब बातें हैं इन लोगों के लिए नहीं है। उसकी इस श्लोक की टीका में न पते आदि दोष सात गुण एव महान मत, इसमें तो महान गुण ही है इसकी पूजा करने में। सेवोत्तमा मता भक्ति, अर्थात तो उत्तमा भक्ति इनकी सेवा करने से फलम जा परम महत, महान फल अर्थात तो उत्तमा भक्ति इसके सेवा करने से होता है। इसकी टीका में कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का त्याग कर भगवत भक्ति के लिए ठाकुर की पूजा करता है या वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर और भजन करने गया, किंतु उसको उस जन्म में सिद्धि नहीं हुई, अथवा किसी कारण से बीच ही में वो छूट गई भक्ति किसी कारण से, तो उसमें हानि क्या है? और यदि वर्णाश्रम धर्म सारा जीवन करता रहा और भगवत सेवा पूजन और भगवत भक्ति नहीं की, तो उसको लाभ ही क्या हुआ? क्या लाभ हुआ उसको? सारा जीवन वर्णाश्रम धर्म, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, दान दक्षिणा और तीर्थ स्नान सब कुछ किया, किंतु भजन नहीं किया, तो उसे क्या लाभ होगा? हरिश्चंद्र जैसे दानी लोगों का ही क्या होगा? मृग महाराज जी का क्या हुआ? वो तो महत लोगों का संग, विश्वामित्र जैसे परम भक्त का हो गया, इसलिए उनका कुछ कल्याण हो गया, नहीं तो इनका तो कोई कल्याण नहीं होता। और दूसरी तरफ में जो कि वर्णाश्रम धर्म को पहले ही त्याग करके गए और अपक्व अवस्था में ही उनका देहपात हो गया, किसी कारण से उनकी सिद्धि नहीं, तो उसमें ही हानि क्या है? क्यों? दूसरा जन्म लाभ करके फिर वहीं से आरंभ करेगा जहाँ से उसका समाप्त हुआ था। जैसे एक स्कूल में पढ़ा और वो पास कर गया, कुछ दिनों के बाद में फिर क्या होगा? दूसरे स्कूल में अगले क्लास में बैठ करके आगे पढ़ेगा। ऐसे ही इसका कहा, तो इसलिए साक्षात भगवत बुद्धि से मत कर्म कुर्वतो पूजां क्रिया लोपो भवेत् यदि तेषां कर्मणि कुर्वति तिस्सः कर्त्तो महर्षयः मत कर्म कर्वतो पुंसा। यदि कोई व्यक्ति हमारा कर्म कर रहा है, अर्थात हमारी सेवा कर रहा है, हमारा भजन कर रहा है, ठाकुर जी की पूजा भी कर रहा है, और क्रियालोपो भवेत्यति, अर्चन कर रहा है और दूसरा कर्म उसका जैसे कि हरिनाम कीर्तन है और सब छूट गया, या माता पिता की सेवा या संसार के और जो कर्ण थे वर्णाश्रम धर्म वाले सब कर्म छूट गए, तो इसको कहते हैं क्रियालोप। तो ये क्रियालोप होने से क्या होगा? तेषां कर्माणि कुर्वन्ति, उसके जो काम जो छूट गए उसके लिए 3 करोड़ महर्षि लोग नियुक्त हैं, उनकी जो त्रुटियां हो गई हैं उसको पूरा करने के लिए, इन लोगों को उसके लिए काम नहीं करना पड़ेगा, इनका प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा। आया समझ में? नहीं आया? यदि मान लिया कि कोई एक आदमी संसार के कर्तव्यों को छोड़ करके भगवान का भजन कर रहा है, उसका कर्तव्य है माता पिता पहले गुरु, पंच ऋण उनके ऊपर में है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, आप तो माने परिजनों का ऋण, ये सब। एक आदमी ने ये सब ऋण चुकाया नहीं और पुत्र का क्या कर्तव्य है? अपने पितृऋण से कैसे दूर होगा? जैसे पिता ने पुत्र उत्पन्न करके पालन करके उसके संसार के योग्य बना दिया, ऐसे पुत्र भी विवाह करके संतति उत्पन्न करके उसको संसार के लिए योग्य बना करके जब छोड़ेगा तब तो उसका पितृ नहीं होगा, बिना विवाह किए नहीं होगा। लड़की का ऋण कैसे चुकेगा? उसकी मैया ने जैसे उसकी सेवा की है और उसे बड़ा बनाया है, ब्रॉटअप किया है, पाला पोसा सब किया, ऐसे ही तुम भी संतान उत्पन्न करके पति की सेवा करके पुत्र और कन्या सब हो, उसको बड़ा बना करके और तब अपने इस ऋण से मुक्त हो। देवताओं का ऋण ऐसे है, सब ऋण ऐसा। जब तक स्त्री ना कहे जे जाओ और भगवान का भजन करो तब तक नहीं जाएं, आदेश देना। किंतु उसने चैतन्य महाप्रभु छुपे चोरी शास्त्र के विधियों का उल्लंघन कर चले गए। महाप्रभु जी ने क्या किया? बूढ़ी सी मैया घर में पालन पोषण करने के लिए कुछ नहीं, नई ब्याह करके दुल्हन लाए हैं घर में, एक बच्चा भी उसकी गोदी में नहीं है, उसके खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया और दायित्व सब छोड़ छाड़ कर चले गए। ये शास्त्र विधियों का उल्लंघन ना? तो उसी के लिए कहते हैं मत कर्म पूर्वता, किंतु गए किस लिए? गोविंद का सेवा करने के लिए। हमने सन्यास वेश किस लिया, किस लिए लिया? मुकुंद
सेवन व्रत वेश धारण,
मुकुंद जी की सेवा करने के लिए ये वेश लिया मैंने। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु जी गए, तो महाप्रभु जी क्या शास्त्र विधियों का उल्लंघन करके गए? तो ऐसे ही जैसे कोई गया तो इसको कहते हैं क्रिया लोभ, जो करना चाहिए नहीं किया। फिर पहले ब्रह्मचर्य रहे, इसके बाद में गृहस्थ रहे, इसके बाद में वानप्रस्थ रहे, इसके बाद में संन्यास रहे, और किसी ने ले लिया ब्रह्मचर्य से तब क्या हो गया? वो तो पितृऋण मातृऋण तो चुकाया नहीं, क्रिया लोप हो गया। किसी ने गृहस्थ धर्म पालन नहीं किया तो ये पितृऋण ये उस पर चढ़ गया, और संन्यास ले लिया कुछ भी नहीं किया, इसलिए कहते हैं क्रिया लोप। इस क्रिया लोप के लिए उसको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि वो मुकुंद का भजन करने के लिए गया। क्यों? वो जो क्रिया लोप हुई उसके लिए 3 करोड़ कि 3 अरब खरब ये सब ब्राह्मण लोगों को नियुक्त किया है, बड़ी बड़े मूछ और दाढ़ियाँ उनकी है, जटा जूटधारी हैं वो लोग, और दिन रात ओम स्वाहा 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 सब करें, और वो लोग क्या करें, केवल दूध दूध खा करके रहने वाले पौहारी वो रहेंगे, और नग्न वेश में भी रह सकते हैं, तो ऐसे रहेंगे वो लोग, ये सबका प्रायश्चित वो लोग करें, उनको नियुक्त कर रहा है। यदि वो लोग इन कामों के लिए प्रायश्चित नहीं करेंगे तो प्रभु उनको दंड देंगे, क्योंकि इसीलिए वो उनको नियुक्त किया गया है। जो हमारे भक्त जो काम को नहीं करते हैं छोड़ देते हैं जीव न, ऐसे भगवान की व्यवस्था है। यदि वो लोग ना करें तो क्या होगा? अरे भाई संसार तो प्रभु का बनाया हुआ, ये तो लोप हो जाएगा ना, इसको करने वाला तो कोई चाहिए, तो उन लोगों को अधिकारी बना करके भेजे, तुम लोग करना भाई, ये विवाह नहीं किया तो तुम 4-5 विवाह कर लेना उन लोगों के लिए, तुम लोग ये नहीं करना तो ये लोग नहीं करना है तो ये तुम लोग कर लेना, जिससे कि प्रायश्चित इनका सब। इसलिए ये कहते हैं कि मान लिया कि कोई भी अर्चनकारी है ठाकुर जी का, सचमुच में भगवान की सेवा करने के लिए उसका कोई क्रिया का लोप भी होता है तो उसके लिए प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि भक्ति 64 प्रकार की है, किंतु एक भक्ति में वो इतना निविष्ट हो गया जो बाकी वो नहीं कर सका तो उसके लिए भी कोई प्रायश्चित नहीं। किंतु एक बात ख्याल रखना पड़ेगा, ठाकुर जी की पूजा में कभी निविष्ट होने पर भी या हरि कथा में निविष्ट होने पर भी भगवत स्वरूप होने पर भी कोई उन्नत अधिकारी वैष्णवों की अवज्ञा नहीं हो जाए। ये बात सब समय ख्याल रखना है। और सह लेंगे किंतु प्रभु इस चीज को नहीं सहन करेंगे। सावधिक पाच श्रवणार्थ कहते हैं इसमें, उनके कर्म करने के लिए उनको ये सब जो काम छूट जाते हैं इनके लिए प्रायश्चित करने के लिए उनको आवश्यक नहीं है, जो उनको सब काम करना ही पड़ेगा, छूट गया वो लोग करेंगे। इस रूप से सावधिकत्व सुना जाता है। सावधिक क्या तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत जावता मत्तथा शरणादो वा श्रद्धा जाऊं न जाए। तावत कर्माणि कुर्वीत, कर्म कब तक करने का अधिकार है? जब तक इसमें वैराग्य नहीं हो जाता। जिस समय में कर्मों में वैराग्य हो जाए और वो जान जाए जैसे ये सब दुख के कारण है और मैं आत्म तत्व हूँ, भगवत भक्ति के अतिरिक्त या ज्ञान के अतिरिक्त, जब ज्ञान हो जाएगा तो कर्म मार्ग में नहीं फंसेगा, ये तो ज्ञान वाला चला गया। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वेद्येत जावता, उसको निर्वेद न हो जाए, ये ज्ञान का भाव है। आत्म तत्व का ज्ञान होने पर कर्म करने का अधिकार नहीं हुआ। दूसरे लोगों की शिक्षा के लिए कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। और दूसरा क्या अंतिम, हरि कथा में रुचि न हो जाए। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत जावता मत कथा श्रवणादौ श्रवण आदौ, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन आदौ, ये किसी भी प्रकार की भक्ति का भाव उसमें यदि आ जाए तो कर्म का अधिकार को उन्नत करके चला जाता है। जैसे किसी ने एम ए क्लास पढ़ लिया, पास कर लिया, तो फिर क्लास फोर में उसको पढ़ने की जरूरत है। रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो कभी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़े, स्कूल में भी नहीं गए, कॉलेज में भी नहीं, घर पर ट्यूशनों के द्वारा वो पढ़े। पहले माता पिता ने पढ़ाया, इसके बाद में ट्यूटर वहीं आते और पढ़ते। और पूर्व जन्म का संस्कार ही ऐसा था जो अपने आप को ऐसे बन गए। अब उनके लिए क्लास एम ए को ये सब पढ़ने की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही ये कह रहे हैं जो कि श्रवण कीर्तन में जिनका मन लग गया उन लोगों के लिए ये सब चीज़ें, कर्म टर्म कुछ नहीं है, वो कर्म कर सकते हैं केवल दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। इसलिए भक्ति में जहाँ श्रद्धा हुई तहाँ अब कर्म के लिए वो दायी नहीं, उसके लिए संसार में जितने भी मनुस्मृति हर संहिता यज्ञ बल्कि इत्यादि में और लोक समाज में जितनी भी रीतियां हैं उन लोगों के लिए नहीं है। करें ठीक है, ना करें ठीक। कोई कोई वो जो है ना सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, उसका अर्थ लगाते हैं आसक्ति छोड़ करके कर्मों को करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माने आसक्ति सब में छोड़ दो और हमारा शरण। हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं क्या, दोनों करो, कर्म में आसक्ति और स्वरूपतः उन कर्मों को भी त्याग कर दो, कर सकता है। जैसे सब लोगों ने, हमारे आचार्यों ने किया है, सब भक्तों ने भी किया है, कैसे किया? भगवान का शरणागत होने पर रघुनाथ दास गोस्वामी जी घर छोड़ दिए। अब कोई कर्म किया? हम लोग भी कोई कर्म नहीं करते, किंतु यदि कोई कर्म कर दे तो हम लोग क्या करें? कर्म का स्थान नहीं है, किंतु जिनकी दुर्बुद्धि है और भक्ति का रहस्य नहीं जानते वो कर्म कर बैठते हैं बेचारे। किंतु भक्ति का जो मर्म जान लेता है उनके लिए कर्म इत्यादि की कोई भी व्यवस्था नहीं, उसे वो अतीत हो जाते हैं, कर्मों के नहीं करने का प्रायश्चित उन पर नहीं लगता। किंतु भगवान ही जप के कारण के लिए हित के लिए कुछ करते हैं, ऐसे संत लोग भी, भक्त लोग भी जगत के कल्याण के लिए नियम कर लो। जद जद आचरति श्रेष्ठ तत् तद एव इतरो जन सज प्रमाण अंकुरते लोकस्तद अनुवर्तते, इसीलिए करते हैं। इसलिए कहते हैं इस शास्त्र के नियम के अनुसार में यदि कोई कर्मों को त्याग करके, कर्म किसको कहते हैं, राम जा रहा है तो वो जा रहा है, ये कर्म हुआ ना, ना क्या हुआ, जा रहा है ना, तो ये जा रहा है, कर तो रहा है किंतु इसमें कर्म नहीं है। कर्म कब होगा, क्रिया करने का फल यदि हम स्वयं चखें तो वो कर्म होगा। मैं आम खा रहा हूं तो ये कर्म हो गया, क्या है, खाना कर्म हो गया ना,
आम खा रहा
हूं, हाँ आम कर्म हो गया, आम को हम टेस्ट कर रहे हैं, मैं खा रहा हूं, ये सकर्मक इसमें कर्म छिपा हुआ है किंतु है ये कर्म ना। इसलिए यदि अपने लिए उद्देश्य से कुछ भी करते हैं, अपने लिए ठाकुर जी मैं आपका अर्चन कर रहा हूं, मैं ऐसा बन जाऊं कि सब जगत के लोग हमारी प्रशंसा करें और खूब अर्थ मिले, तो ये क्या हुआ, पूजा ऊपर से है किंतु पूजा नहीं होकर के ये कर्म हो जाएगा। इसलिए भगवान के लिए जो कुछ भी किया जाता है वही भक्ति है, और मुक्ति के लिए जो कुछ किया जाता है वो ज्ञान है। जब किसी के उद्देश्य से नहीं करते हैं वही मुक्ति का, वो ज्ञान का हेतु है, और जब हम कुछ भी करते हैं भगवान के उद्देश्य से तो वो भगवान उस पूजा को ग्रहण करते हैं। जिस पूजा में ये उद्देश्य रहे भगवान प्रसन्न हो, बस यही, भगवान प्रसन्न हो जाएं और हमको पुत्र दे दें, कन्या दे दें, धन संपत्ति दे दें, तो वो हो गया कर्म। ऐसे लोगों की पूजा भगवान ग्रहण नहीं करते। आज जो लोग भगवान को केवल प्रसन्न करने के लिए ही भगवान की पूजा करते हैं, भले उनकी पूजा में कुछ त्रुटि भी हो, तुलसी दिया किंतु उस तुलसी थोड़ी सी टूटी हुई पत्ता था, भगवान ग्रहण करेंगे कि नहीं, वो कर लेंगे। जहां तक नियम है श्मशान भूमि की तुलसी न हो, कीड़े खाए हुए तुलसी न हो, कीड़े खा लेते हैं ना, कोई गंदी जगह की तुलसी हो या फूल हो उसको नहीं देना चाहिए, बिना धोए हुए तुलसी नहीं देना चाहिए, बिना धोए हुए तुलसी का फल क्या होता है यदि ठाकुर को दिया जाए, वो किसका हुआ था, हरिदास ठाकुर जी, पूर्व जन्म में ठाकुर जी को भोग दिया और उसमें तुलसी दी किंतु तुलसी में मिट्टी फिट्टी कुछ लगी हुई होगी, धोया नहीं, तो इसलिए अच्छा जवन हुआ, किंतु जो श्रद्धा से जो अर्पित किया था उसके वजह से क्या हुआ, महान भक्त हो गए, दोनों एक साथ में हुआ, कर्म का फल भी मिला और उधर भक्ति का भी फल, भक्ति का जो निवेदन किया था उससे तो हो गया उनको भक्ति, और यदि धो करके नहीं दिया इसलिए जवन कुल में पैदा हो गए, और वो जो श्रद्धा थी श्रद्धा के वजह से जवन होने पर भी उनकी भक्ति बनी रही, उनकी हानि कुछ नहीं हुई। यदि वो श्रद्धा से नहीं दिए होते और बिना धोए हुए नहीं दे तो मुसलमान कुल में होते और मस मदिरा खाते और वो भ्रष्ट हो जाते, भगवान से कोई संबंध ही नहीं होता। कहते हैं कि भगवान के शिव विग्रहों की पूजा की महिमा, सिद्धि स्यात् भगवत दृष्ट्या तृण सम्मानाद, भगवान के शिव मूर्तियों की पूजा की तो बात बहुत दूर की रहे, इनकी तो महिमा ही बहुत है, यदि भगवत बुद्धि से तृण सम्मानाद अपि, एक तृण को भी उसको भगवान की बुद्धि से प्रणाम करते हैं और उसके प्रति भाव अर्पित करते हैं, उसको सम्मान करते हैं, तो वो अभीष्ट सिद्धि को देने वाली होती है। जिस प्रकार से न जान सुन करके भी पुत्र के लिए भगवान का नाम करने से अजामिल की गति हो गई, नहीं महिमा जान करके भी किसी ने अपने किसी पारिवारिक जनों का नाम राधा दासी रख दिया, कृष्ण दास रख दिया, मदन मोहन रख दिया, उसका फल होगा कि नहीं? कुछ जरूर फल होगा, अवश्य फल होगा, आभास से भी। इसलिए कहते हैं कि उसी प्रकार से भगवत बुद्धि से एक तीर्ण का भी सम्मान यदि कोई करे, क्यों करे? ऐसी कोई वस्तु ही जगत में नहीं है जिसे भगवान का कोई संबंध नहीं है। है कोई वस्तु? सब में भगवान का अधिष्ठान है, किंतु यही घास ही भगवान है, ये गधा ही भगवान है, इस बुद्धि से करे तो वो गधा जन्म होगा, ऐसा नहीं। कहीं कहीं पर ऐसा है लिखा कि एक गधे को तिलक कर दिया और गले में तुलसी की माला पहना दी, और उसको यदि कोई प्रणाम न करे तो भक्ति नहीं है, उसको भी प्रणाम करते थे कोई। हाँ, यदि पूज्य दृष्टि से वो करता है तो कोई हानि नहीं, किंतु उसको भगवान यदि समझ लेता है तो यहाँ पर दुर्बुद्धि है। इन सब का ख्याल होना चाहिए, भक्ति तत्व का विवेचन होना चाहिए। तो भगवत दृष्टि से यदि उस तीर्ण का सम्मान भी यदि करते हैं, काजे कैसे? ये सियाराम में सब जगत प्रहलाद महाराज की भांति सबको प्रणाम करते हैं, पशु पक्षी तीर्ण पतंग सबको। क्यों? बिना भगवान की सत्ता की कोई सत्ता रह नहीं सकती, किंतु इसलिए नहीं कि ये भगवान ही स्वयं है। एक मोर पंख को हम देखते हैं ना, मिट्टी में गिरा हुआ है और उस पर लोग पैर दे रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं? झट उसे उठा लेते हैं, झाड़ फूक करके सिर पर रख लेते हैं, यदि कहीं रखना भी है तो कोई अच्छे पवित्र जगह में उसको रख लेते हैं या अपने पास में रख लेते हैं। किस लिए रखते हैं? ये कृष्ण है, कृष्ण की प्रिय वस्तु है, कृष्ण इसको धारण करते हैं। ये भगवत बुद्धि है, इस बुद्धि से तीन को भी यदि सम्मान दिया जाए तो यह सम्मान उसको भगवत प्राप्ति में महा सहायक होता है। तो और की तो बात क्या, प्रतिमा ही रहे तो क्या बात। चराचर की समस्त वस्तुएं ही भगवान की शक्ति से प्रकटित है, इसलिए उसको प्रणाम करने में कोई हानि नहीं, जैसे प्रहलाद महाराज इत्यादि किया करते थे। सभी कुछ भगवान की विभूतियां हैं ऐसा समझ करके। यदि तीर्ण इत्यादि नगण्य वस्तुओं को भी भगवत दृष्टि से सेवा करने से सिद्धि लाभ होती है, तब साक्षात रूप में भगवान के स्मारक जो श्री विग्रह हैं, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, जैसे भी अपने घर में कोई लेकर के उसकी पूजा करता है या श्री विग्रह मंदिर में पूजित होती है, और यदि उसकी मंत्र से वैदिक मंत्रों से उसकी प्रतिष्ठा की गई हो आमाहन पूजन अभिषेक इत्यादि के द्वारा, तो इसमें दोष की संभावना कहां रह सकती है? इसलिए इसमें दोष की कोई भी संभावना नहीं। इसलिए भगवत प्रतिमा की पूजा समस्त शास्त्रों में लिखी गई है, और जो जो चीज लिखी गई है पूजा में जो दोष है, अब उसको मैं बतलाते क्यों ये शास्त्रों में लिखा गया ऐसा। कहते हैं कदापि कृष्ण प्रतिमा अर्चनावर्त न संभवित कृष्णसु अनावर्त। कोई भी कनिष्ठ भक्त भी होगा, यदि भक्त होगा कनिष्ठ भी हो, भले ही तत्व ज्ञान न हो, किंतु यदि भगवान की प्रतिमा का पूजन करेगा तो कभी भी वैष्णव का अनादर नहीं कर सकता। प्राकृत भक्त भक्त है ना, कभी भी अनादर नहीं कर सकता, वैष्णव को देखते ही प्रणाम करेगा, कहे जी हमारे ठाकुर जी का दर्शन कीजिए, उनका प्रसाद है प्रसाद लीजिए, अब क्या नहीं करेगा। किंतु यदि कोई करता है तो तब तो बड़ा खाली कर, तो अभी कनिष्ठ भक्त भी नहीं, या किसी कारण से भक्ति तत्व को नहीं समझ सका, अपने उद्देश्य से भ्रष्ट हो गए, जैसे ये अजामिल भी भ्रष्ट हो गया, सदाचारी ब्राह्मण था, वो भी ठाकुर जी की पूजा इत्यादि सब कुछ करता था, माता पिता का आदर भी करता था, किंतु भ्रष्ट हो गया। ऐसे ही कोई भजन करने आया और अपने उद्देश्य से भ्रष्ट हो गया तो ऐसा देखा जाता है, विशेष करके कलयुग में ऐसा देखा जाता है, लोग हर बार छोड़ करके आए और झगड़ने लगे एक तुच्छ स्वार्थ के बस, निरपेक्ष जो वैष्णव है उनको भी मारना पीटना, यहाँ तक कि भोजन की थाली भी वहां से हटा देना बैठे हुए को, ऐसा भी सुना जाता है, देखा ये कौन सी किसकी बात। तो ये ऐसा देखा जाता है। भाई आप लोग जिनको भक्ति की इच्छा है इन सब चीजों से बच करके रहने की चेष्टा करें, इसलिए कहते हैं यदि वो वैष्णव का जो अर्चन करता है न संभवित कृष्ण अनादर, कृष्ण भक्त ईश्वर अनादर, कृष्ण भक्तों का अनादर वह नहीं कर सकता है, यदि वो एकदम अर्वाचीन भक्त भी है कनिष्ठ भक्त भी है तो नहीं करता है, किंतु एक ऐसा अवसर है जिस समय अर्चन पर बैठा हुआ हो और कोई वैष्णव आ गए तो उनका आदर नहीं कर सकता है, ऐसी स्थिति में वैष्णव लोग बड़े कृपालु होते हैं, वाह वाह पूजा होनी चाहिए, तो ऐसे मालूम ही नहीं जी को आया कि नहीं और एकदम आविष्ट होकर के पूजा अर्चन कर रहा है, उस पर और भी वो कृपा ढाल देते हैं, उसका बल्कि दोष नहीं लेते, और यदि ऐसा नहीं किया तो जो आने वाला वैष्णव है वैष्णव भी नहीं, यदि उसका अपराध यदि देखता है, इसलिए ऐसे ऐसे तुच्छ चीजें हैं अनादर नहीं कर सका, ये गड़बड़ की बात है। किंतु अपराध वहां है जहां बलदेव जी आए और लोभ हर्षण सूत जानबूझ करके उनको प्रणाम नहीं किया, आविष्ट नहीं थे, उन्होंने देखा मैं यहाँ सबका इतना आदरणीय होकर के व्यास आसन से भला उठूं जाऊं, आदर नहीं किया, इसलिए उसका गला काट दिया। इसलिए कहते हैं यदि कृष्ण पूजा में आसक्त रहते हैं, कृष्ण परेश अनादर घटे चेत करह्यपि तद विषक्तो अपि गृणन्ति न तद आगमे स्तवन्त। हे प्रभो, उस समय में यदि वो आविष्ट रहता है पूजा में स्तुति स्तव में और कोई वैष्णव आ गया उसने देखा नहीं और उस समय में कोई त्रुटि हो जाती है तो वैष्णव लोग उसके इस त्रुटि को भी महान गुण ले लेते हैं, वो इसको अपराध के रूप में नहीं लेते, यदि ऐसा हो तो। किंतु जानबूझ करके आए हैं तो क्या है, लाड साहब आ गए, यदि ऐसी भावना हो गई तब तो फिर अपराध, तब तो ठाकुर जी उसकी पूजा नहीं लेते। एक कल मैंने कहा था, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया कि ठाकुर जी को हम लाख रुपया करके उत्सव कर रहे हैं, ठाकुर जी की पूजा करने के लिए हम एक महीने से खूब व्यस्त हैं और चीजों का संग्रह खूब कर रहे हैं और विराट रूप में भंडारा किया हजारों लाखों लोगों के, और ऐसा बिजली से और सब चीजों से डेकोरेशन किया, ये लोग समझे जी हाँ गौड़िया मठ में कैसा हुआ उत्सव ना, ऐसा इस रूप में यदि कोई करे। और ये कौन कराया? बिजली का डेकोरेशन किसने की और इतनी व्यवस्था किसने की? इसलिए यदि उसने किया तो वो पूजा करना बेकार का हो गया, ठाकुर जी नहीं लेंगे। आया कुछ समझ में? इसका मैंने प्रतिष्ठा ले ली, ये जो कर रहा हूं इससे हमारी प्रतिष्ठा जगत में बढ़ेगी, लोग कहेंगे वाह खूब किया, तब तो ठाकुर जी उस पूजा को नहीं ग्रहण करेंगे। और यदि थोड़ी सी भी पूजा हो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हो तब तो पूजा थोड़ी होने पर भी उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए ऐसे अनादर पूर्वक जो है उसको ठाकुर नहीं ग्रहण करते, चाहे जितनी भी बड़ी भारी पूजा हो। इसलिए पूजा करते समय सब समय हृदय में ये भाव रखा जाए, नाम करते समय में, ये किसके बच्चे हैं सब लोग अपना ले क्यों नहीं लेते? नाम करते समय में जैसे किसी आत्मीय स्वजन को बुलाते हैं ऐसी भावना न रहे तो प्रभु के कान में नहीं हो जाता। जैसे हम कहते हैं अरे बाकी जरा इधर आना, ऐसे ही प्रभु को इस रूप में भी यदि नहीं बुलाते हैं तो प्रभु सुनेंगे नहीं सुनेंगे?